समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her king. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. Beautiful hymn on a Sunday morning, just to usher in the festive glory that awaits us this week. Farhat, my co-host, and yours truly, Subhadra. We are ready with another exciting edition of Aaj Savere, your favorite magazine show from our studios at Akashwani. Good morning, Farhat.
गुड मॉर्निंग और सुप्रभात मेरे सभी श्रोताओं को। मैं हूं हाजिर फरहत नाज कार्यक्रम आज सवेरे लेकर सुभद्रा के साथ। और बिल्कुल सही कहा, खुशियां ही दिसंबर का महीना चल रहा है और क्रिसमस जो है आने वाला है। इसके अलावा हम लोग 31 दिसंबर को नया साल मनाने जा रहे हैं और जनवरी जो है वो शुरू हो जाएगा 2026। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जो खुशियां हैं वो लेकर आए, आप स्वस्थ रहें और नए साल में जब आप प्रवेश करें तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ करें। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आपका जो नव वर्ष है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सभी के लिए। तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपका अपना न्यूज मैगजीन प्रोग्राम लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से।
यस फरहत,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नामरूप में 12,000 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर एक व्यय जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य के अपने दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज जहाज की सवारी करते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत 25 स्कूली छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुवाहाटी के पश्चिम बोरागांव में असम आंदोलन के 860 शहीदों की स्मृति में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया।
वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन सेड द क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज विल प्ले अ डिसाइसिव रोल इन अटेनिंग विकसित भारत बाय 2047 एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। एड्रेसिंग द वैलेडिक्टरी सेशन ऑफ द टू डे कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन हैदराबाद लास्ट इवनिंग, मिस्टर राधाकृष्णन सेड एज द कंट्री इज मार्चिंग टूवर्ड्स द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047, द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड द क्वालिटी ऑफ people who run institutions will be decisive. Meanwhile, the Vice President will take part in the Heartfulness Meditation event to be held later this morning at Kana Shanti Vanam near Hyderabad on the occasion of the World Meditation Day.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चेतावनी जारी कर बताया है कि घोष पेयरिंग नाम के एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है।
Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that all constitutional institutions must work in the spirit of the Constitution to ensure that court decisions are made accessible to citizens in their own languages. Addressing the 33rd annual program of the Hindi Seva Nidhi Trust in Itawa, Uttar Pradesh, he said there was an expectation that constitutional provisions relating to language would be implemented across the country. While English remains the official language of the apex court, as per constitutional and legal provisions, Justice Kahn said significant steps had already been taken to bridge the language gap. He said that they have already started translating Supreme Court judgments into 16 languages, and any citizen of the country should be able to read an authenticated translated copy in the language of his or her state.
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सभी संवैधानिक संस्थानों को संविधान की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं और अदालती फैसलों को नागरिकों के लिए उनकी अपनी भाषा में सुलभ किया जा सके। उत्तर प्रदेश के टावा में हिंदी सेवा निधि ट्रस्ट के 33वें वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद की जाती है कि भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजी सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा बनी हुई है, लेकिन भाषा की बाधा को दूर करने के लिए पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का 16 भाषाओं में अनुवाद का काम शुरू कर दिया गया है और देश का कोई भी नागरिक अपने राज्य की भाषा में प्रमाणित अनुवादित प्रति पढ़ सकेगा।
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said that the Viksit Bharat G. Ramji Bill is not only beneficial for farmers and workers, but also connected to the development of villages in every aspect. He said this while addressing the Chaudhary Charan Singh Awards 2025 in New Delhi yesterday. He also informed that the ministry is inviting suggestions in the agriculture sector for the upcoming budget 2026-27 to build a resilient system. Mr. Chauhan highlighted the establishment of Chintan Shivir to bring together farmers, experts and agri-scientists for the formulation of schemes effectively.
आगे 5 साल की योजना बननी है और इसमें भी आपके सुझाव हो तो वो सुझाव मुझे जरूर दीजिए। एक चिंतन शिविर भी करने वाले, खेती में करना क्या है, उसमें कृषि जगत से संबंधित हम किसान को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को इकट्ठा करें और उनसे भी पूरी सलाह मशवरा लेंगे।
और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। आयुष महात्रे की कप्तानी में भारत 9वीं बार खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा। इससे पहले भारत ने ग्रुप स्टेज के मैच में पाकिस्तान को हराया था। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि पाकिस्तान ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
The Board of Control for Cricket in India, BCCI, has announced India's squad for the upcoming 5-match T20 series against New Zealand and the ICC Men's T20 World Cup 2026. The Men's Selection Committee yesterday picked a 15-member squad, Surya Kumar Yadav as captain and all-rounder Akshar Patel as vice-captain. The squad's announcement was followed by a press conference at the BCCI HQ in Mumbai. On dropping Shubman Gill from the team, Chief Selector Ajit Agarkar said that Gill was short of a little bit of runs at the moment and the team went with different combination. Moreover, on including Ishan Kishan in the squad after a long time, Agarkar said that he bats at the top in white ball cricket and he's been in good form.
और सुभद्रा, मौसम का रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले 3 दिन तक हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई स्थानों पर भारी हिमपात होने के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में कल तक शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में कल घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। और श्रोताओ, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं महानगरों की खबरों का, यानी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से हम जानेंगे क्या है समाचार आज खास। तो सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
यस फरहत, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, अ फायर ब्रोक आउट एट द BSNL अन्ना रोड टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग यस्टरडे, डिसरप्टिंग मोबाइल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज अक्रॉस चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फायर एंड रेस्क्यू टीम्स रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली एंड कंप्लीटेड द रेस्क्यू ऑपरेशन विद सस्टेन्ड एफर्ट्स। इमरजेंसी सर्विसेज एंड इंटर ऑपरेटर कॉल्स वर रिस्टोर्ड इमीडिएटली। वॉइस एंड डेटा सर्विसेज इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड द रेस्ट ऑफ तमिलनाडु हैव बीन फुली रिस्टोर्ड, while services in Chennai are partially restored and repair work is continuing. The cause of the fire is under investigation. We have another news from Chennai. Tamil Nadu has launched an AI-powered Command and Control Center for Human-Wildlife Conflict Management in the Gudalur Forest Division of the Nilgiris District, marking a significant step towards technology-driven and community-oriented conservation. The facility, set up at the Nadugani Range at a cost of 6 crore rupees under the modernization of the Tamil Nadu Forest Force scheme, aims to strengthen forest protection through advanced technology. Operated round the clock by trained personnel, the center will be supported by on-call rapid response teams to ensure swift field-level action. Getting to Bengaluru now. Union Minister of State for MSME, Labour and Employment, Shobha Karandlaje, unveiled the logo of the Global India MSME Conclave 2026 in Bengaluru yesterday. The conclave is being jointly organised by the Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industries and the Pinya Industrial Area Federation. Expressing happiness over the initiative, the minister urged industry bodies to focus on innovation and knowledge generation to produce globally competitive products in India. She said MSMEs must tap their potential to conceive and create next generation products to succeed at the global level. Getting to Hyderabad now. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has announced that the government will enact a new law to curb hate speech against any religion or community, including acts of instigation and provocation that could trigger disturbances. The proposed legislation will be tabled in the State Assembly during the budget session. Speaking at the state-organized Christmas celebrations in Hyderabad last evening, the Chief Minister said the Act will focus on curbing religious hatred. He also said the existing laws will also be amended to ensure stringent punishment for offenders who abuse other religions. Farhat, over to you now for rest of the news.
जी सुभद्रा, दिल्ली और मुंबई में जानते हैं कि आज क्या है कुछ खास. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्राफ 4 के तहत अपना अभियान तेज कर दिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. राज्य सरकार ने एक बयान में यह भी कहा है कि इसका अनुपालन न करने वाले कुल 612 उद्योगों को बंद कर दिया गया है और 3 दिनों में 1 लाख से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. इसके अलावा सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरों और जिलाधिकारियों को निगरानी बनाए रखने का भी निर्देश दिया है. और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई उड़ानों और रेलगाड़ियों का संचालन भी प्रभावित हुआ है. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 138 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. दिल्ली आने वाली कई रेलगाड़ियों का संचालन कल अवरुद्ध हुआ. 37 रेलगाड़ियां 2 घंटे से अधिक विलंब से चल रही हैं. मौसम विभाग ने आज सुबह कुछ स्थानों पर बहुत घना कोहरा और रात में हल्का कोहरा रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है. और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान कल शाम 5:30 पर संपन्न हो गया. इसके अलावा इन स्थानीय निकायों में 143 खाली सदस्य पदों के लिए भी वोट डाले गए. मतदान कल सुबह 7:30 पर शुरू हुआ था और दोपहर लगभग 47% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. आयोग ने बताया कि 2 दिसंबर को हुए पहले चरण सहित कुल 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मतों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय कला महोत्सव 2025 पुणे के यशवंतराव चौहान विकास प्रशासन अकादमी में आज से 23 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहा है. इस महोत्सव का उद्देश्य शिक्षा को अधिक रचनात्मक और रुचिकर बनाना है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र और शिक्षक केंद्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ इसमें भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में गायन वाद्य संगीत नृत्य नाटक दृश्य कला और पारंपरिक कथा वाचन सहित 12 कला रूपों में प्रस्तुतियां दी जाएंगी. और अब महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. न्यूनतम तापमान आज रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मुंबई में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कोलकाता में हल्का कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
And Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius. Maximum will be around 29 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have fog or mist in the morning. That's early mornings, and the minimum temperature was 16 degrees Celsius and the maximum will be around 27 degrees Celsius. Again, Hyderabad is expected to have fog or mist in the early morning, and temperature will be between a minimum of 14 degrees and a maximum of 29 degrees. And Farhad, the next segment we are moving on. And today is a very important day that we all know. Today is World Meditation Day. Last year, that's the year 2024, this day, the UN General Assembly, represented by India, had declared December 21 as World Meditation Day. And of course, this is done in order to promote peace, mental well-being and inner reflection. And that coincides with the winter solstice. And Farhat, as we all know, meditation is a proven science of mind and body alignment, enabling us to lead healthier, happier and more purposeful lives.
जी बिल्कुल सुभद्रा, विश्व ध्यान दिवस बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी चीज में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो वो काम बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि ध्यान जो होता है लगाना किसी भी चीज के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है. जी मेडिटेशन जो होगा वो बहुत जरूरी होता है, चाहे आप पढ़ाई के लिए करें, किसी कार्यालय में आप काम कर रहे हो या फिर घर पर काम कर रहे हो, और इससे आपका जो स्वास्थ्य जो है वो भी और बेहतर होता है.
एंड स्टेइंग क्वाइट इज सो डिफिकल्ट आल्सो, यू नो दैट इट्स इजीयर सेड देन डन. सो स्टे क्वाइट एंड कंसंट्रेट ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर दैट यू नो एवरलास्टिंग कंसंट्रेशन, पीस एंड हैप्पीनेस, नॉट जस्ट फॉर द डे बट यू नो मेक इट यू नो एवरी डे प्रैक्टिस.
जी बिल्कुल, तो रोजाना जो है वो ध्यान जरूर लगाएं, योगा जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, तभी आपका जो काम है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा. और अब आगे बढ़ते हैं. सुभद्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अखबार में जो कभी कभी पजल आती है, क्रॉसवर्ड पजल, वो आपने खेली है?
Of course, forever. It's such a addiction for everyone. Yeah, that happened today, right? 1930, yes.
हाँ बिल्कुल, हम उसी के बारे में आज थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि 1913 में एक अखबार में मॉडर्न क्रॉसवर्ड पजल को छापा गया था, और अमेरिका का ये अखबार था द न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संडे सप्लीमेंट में. ब्रिटिश पत्रकार ऑर्थन वेन ने इसे बनाया था, और पहला इसका नाम था वर्ड क्रॉस.
Yeah, it had only 32 clues, and then suddenly it became very popular, and everyone started copying it. That's the history, right?
Mm-hmm.
Yeah. And going back a little back in time, 1846, anesthesia was used for the first time in Britain during an operation at University College Hospital in London, performed by Robert Liston, who amputated the leg of a worker.
और 1971 में कर्ट वाल्डहाइम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चौथे महासचिव चुने गए. वाल्डहाइम ने 1 जनवरी 1972 से काम शुरू किया. वाल्डहाइम 1918 में 21 दिसंबर को ही पैदा हुए.
एंड 1891 दिस डे, लेट्स चेक आउट द हिस्ट्री ऑफ द वेरी फर्स्ट बास्केटबॉल गेम. जिम टीचर जेम्स नेस्मिथ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट गेम ऑफ बास्केटबॉल, विच वॉज प्लेड ऑन दिस डे इन 1891 इन अ स्कूल इन स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स.
1974 में आज के दिन पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले जंगी जहाज INS सतवाहन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया.
एंड 1937 द डे द मूवी स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स प्रीमियर. इट वाज वॉल्ट डिज़नीज़ फर्स्ट फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म, एंड इट्स क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस डिटरमिन्ड हिज कंपनीज़ पाथ फॉरवर्ड फॉर डेकेड्स. एंड ऑल्सो फरहत, 1972 दिस डे ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, एंडिंग नियरली टू डेकेड्स ऑफ कोल्ड वॉर हॉस्टिलिटी एंड पेविंग द वे फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ ईस्ट जर्मनी.
और सन 2012 में साउथ कोरिया के सिंगर साई का गाना गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो बना. और श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह को. सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी, जो 37 से भी अधिक दिनों तक चली, और मिल अधिकारियों को मजदूरों की सभी मांगे मंजूर करनी पड़ी. वो हड़ताल ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में हुई. ठाकुर प्यारेलाल 1920 में पहली बार महात्मा गांधी के संपर्क में आए. असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार होकर जेल भी गए. वर्ष 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को संगठित करने के लिए उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना हुई. वहीं प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने की दिशा में भी वो सदा सक्रिय रहे.
एंड फ्रेंड्स, रिमेम्बरिंग अ ब्लूज लेजेंड, a left-handed guitar great, Albert King, who left us this day in the year 1992. taught himself guitar, moved from gospel roots to electric blues, achieving major success with his influential 1967 Stax Records album, Born Under a Bad Sign, which is playing right now. This impacted generations of rock and blues musicians. King, of course, remained a major name in blues and was elected to the Blues Hall of Fame in 1983. But he never enjoyed the commercial success that many of his followers did. That included Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, and Jimi Hendrix. Let's listen to some more of this beautiful blues tune, Born Under a Bad Sign.
I can't read, I didn't know how to write. My whole life has been one big fight. Born on the bed.
और श्रोताओ, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज के बारे में जो रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी के रूप में जाने गए, तो क्यों ना पहले उनकी आवाज ही सुन लेते हैं।
हेलो बहनों और भाइयों, आज आपके इस रेडियो दोस्त अमीन सायानी का दिल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो खुशी के मारे झूम रहा है कि आहा, आज गीतमाला की छाओ में के इस वॉल्यूम नंबर 49 में हम फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड के साल 1980 यानी 1980 के दूसरे हिस्से का भी पूरा पूरा मजा लेने वाले हैं। तो आइए आइए बहनों भाइयों, शुरू करें 1980 की सालाना गीतमाला की संगीत सीढ़ी के दूसरे हिस्से का हाल फिल्म तराना से। साल नंबर 14 पर उभर आया था म्यूजिकल हिट फिल्म सुहाग का ये गीत।
कहाँ ले जाऊँ, कहाँ जाना है, अरे कुछ आता पता कोई ठिकाना है
क्या तुमको सुनाऊं?
हाँ, ये आवाज है अमीन सयानी की। गीतमाला प्रोग्राम के जरिए सुनी गई अमीन सयानी की आवाज लंबे समय तक लोगों को गुदगुदाती रही। करीब 46 वर्ष तक रेडियो सिलोन के जरिए अमीन सयानी की प्रस्तुति और बाद में विविध भारती पर इसके प्रसारण को लोग आज भी याद करते हैं। अमीन सयानी देश के ऐसे पहले रेडियो स्टार रहे जिनका बड़े बड़े फिल्म स्टार भी सम्मान करते रहे। एक जमाना था जब अपने बिना का गीतमाला कार्यक्रम के माध्यम से आवाज के इस शहंशाह ने अपने नाम और काम की धूम मचा दी। रेडियो सुनने का शौक रखने वालों के कानों में आज अमीन सयानी की आवाज में नमस्कार बहनों और भाइयों, में आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ गूंजता है। जी हाँ, कार्यक्रम बिना का गीतमाला ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई और अमीन सयानी ने हिंदुस्तानी में प्रस्तुति देने के लिए ऑडिशन भी दिया था। उनकी आवाज में हल्का गुजराती लहजा होने के कारण उनका चयन नहीं किया गया, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री अगर उस समय जो है आकाशवाणी से हिंदी गानों पर जो है बहुत सारा रेडियो सिलोन जो है वो लोकप्रिय भी रहा और उन्होंने रेडियो सिलोन पर बिना का गीतमाला जो है पेश करने का मौका भी उन्हें मिल गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उनका मानना था कि रेडियो के बारे में और भाषा के बारे में कि रेडियो में जो भाषा है वो जितनी सरल होगी लोग उतना ही उसको महसूस
yes,
कर सकेंगे।
of course, of course. And friends, from Amin Sayani, we are moving to Carl Wilson of the Beach Boys. Born this day on December, that is this day, 1946 in Hawthorne, California. American musician, best known as a founding member and lead guitarist of the iconic rock band, the Beach Boys. His soulful voice and exceptional guitar skills played a pivotal role in shaping the band's distinctive sound. He died young, friends, but his legacy continues through the Carl Wilson Foundation, established by his family to support cancer research and assist musicians in need. You're listening to this beautiful song called Heaven.
Heaven's the place for me to go. No one ever could have told me how. No one have told me how heaven could be here on earth.
Hollywood actress, fitness guru Jane Fonda celebrates her birthday today. She first gained fame in comedic roles, but later established herself as a serious actress, winning Academy Awards for her work Clue in 1971 and Coming Home in 1978. Fonda was also active in women's rights movement, and in 2005 she co-founded the Women's Media Center. She also sought to raise awareness about climate change. And friends, 1947, birth anniversary of Francisco Sanchez Gomez, popularly called Paco de Lucia. Virtuoso guitarist, specialized, revolutionized the form of guitar playing called flamenco and made jazz more interesting. Indeed, a leading proponent of the new flamenco style, he helped legitimize flamenco among the music joints in Spain and was also one of the first flamenco players to have successfully crossed over to other styles of music like classical music and jazz, of course. You're listening to this track called Rio Ancho, played by Paco de Lucia. And friends, today is also the birth anniversary of Frank Zappa, a brilliant guitar player, orchestral composer, innovative filmmaker, music producer, band leader of Mothers of Invention. One finds elements of rock, jazz, classical and rhythm and blues in his music, along with free-form improvisation. This track is called Peaches and Regalia, Frank Zappa. And friends, we have two sports birthdays today. 1954, Chris Evert, American tennis player. She won 18 Grand Slam singles titles. She was born in Fort Lauderdale in Florida. And former Indian cricket captain Krishnamachari Srikanth celebrates his birthday. And of course, he's renowned for his aggressive opening batting, playing a key role in India's 1983 World Cup win and later serving as the chairman of the selection committee who guided India to the 2011 World Cup victory.
और बॉलीवुड में जब भी डांस और कॉमेडी की बात आती है तो सबसे पहला नाम याद आता है चीची यानी गोविंदा का, हीरो नंबर वन का. जी हाँ, 1986 में आई फिल्म इल्जाम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन साल 1990 का दशक अभिनेता का बेहतरीन साल रहा क्योंकि उनकी बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हुई. इसे उनके करियर का स्वर्णिम काल कहा गया. उनकी हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, राजा बाबू और कुली नंबर वन जैसी फिल्में सुपरहिट हुई. तो आइए सुन लेते हैं उनके कुछ चुनिंदा गीत.
सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन. मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हीरो नंबर.
तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है. क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है.
कुछ खोना है, कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है. जब तक ये सांस चलेगी यारा, ये तो चलते जाना है.
बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, देख गई बम्बई का नजारा,
दिल की धड़कन थम गई.
बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई.
और सुभद्रा, गोविंदा के गानों में मुझे जो एक गाना बहुत ही पसंद आया, कुछ खोना है, कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है. तो नए साल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. तो ये चीज जो है वो जरूर लोगों के अंदर होनी चाहिए. अगर आप कोई चीज खो देते हैं तो उसमें गम में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि एक जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए.
He's a funny chap, but he gets serious sometimes, all right? Songs like this.
जी बिल्कुल. और अब इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा.
Yes, friends, you stay tuned for coming up now with Samacha Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in.
जी बिल्कुल, और हमें याद करते रहिए. और अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in. तो इसके साथ ही सुभद्रा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत.
नमस्कार.